Our Heavenly Father,
हम से बड़ी उम्मीदें हैं. उन उम्मीदों को ईसा मसीह ने ऐसे समझाया, मैं चाहता हूँ कि तुम सिद्ध बनो जैसे मैं या तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध हैं. वो हमें पवित्र बनाना चाहते हैं ताकि हम स्वर्गीय महिमा सहन कर पाए और उनकी उपस्थिति में फिर लौट पाए. इसलिए क्या करना जरूरी है ये उन्हें पता है. इसे मुमकिन करने उन्होंने हमें आज्ञा, करार, पवित्र आत्मा की देन और सबसे महत्वपूर्ण उनके बेटे की क्षतिपूर्ति और मृत्युत्थान दिया है ताकि हमारा परिवर्तन हो पाए. ईश्वर का उद्देश्य है कि उनके बच्चे सर्वोत्तम खुशी पाए, उनके साथ सदा रहे और उन जैसे बने. काफी साल पहले एल्डर डैलन ओक्स ने समझाया, आखिरी निर्णय सिर्फ हमारे अच्छे या बुरे कर्मों की गणना नहीं है, वो हमारे कर्मों की और विचारों का प्रभाव द्वारा हम क्या बने हैं इसकी स्वीकृति करना है. लापरवाही से कार्य करना काफी नहीं है. आज्ञा पालन, विधियां और सुसमाचार के कारण ऐसी बातें नहीं हैं जो किसी स्वर्गीय खाते में जमा होती है. ईसा मसीह का सुसमाचार एक योजना है जिसके द्वारा हम वो बन पाएंगे जो हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए चाहते हैं. दुख की बात है कि ज्यादातर ईसाई नहीं मानते कि ईश्वर उसके भक्तों से कुछ अपेक्षा भी करता है. वो उसे एक सेवक के रूप में दिखते हैं जो पुकारने पर उनकी सहायता करने आता है, या थेरेपिस्ट जो उन्हें अच्छा महसूस करने देता है. इस तर्क में लोगों को जिंदगी में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती. किसी ने लिखा है, इब्रानियों का ईसाई ईश्वर उनसे सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं पर जान भी मांगता है. बाइबल का ईश्वर जिंदगी और मौत के सौदे करता है, कोमलता के नहीं, जीवन त्याग की अपेक्षा करता है, लापरवाह प्रवृत्ति नहीं. मैं एक प्रवृत्ति और हुनर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमें ग्रहण करनी पड़ेगी स्वर्गीय पिता की ऊंची अपेक्षा पूरी करने. वो है खुशी से डांट स्वीकार करना और उसे मांग भी लेना. सुधार जरूरी है जीवन को मसीहा के अनुकूल सिद्ध बनाने. पौलुस ने इस दिव्य सुधार को या डांट के बारे में यह कहा है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे वो डांटता भी है. हालांकि यह सहना मुश्किल है, हमें खुशी होनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें डांटने के लायक समझा और वह करने उसने वक्त भी निकाला. दैवी ताड़नी ये के तीन मकसद हो सकते हैं, एक पछताने के लिए अनुग्रह, दो हमें शुद्ध और पवित्र बनाने, और तीन मार्ग बदलकर बढ़िया मार्ग की ओर निर्देशन करने. पहले पश्चाताप पर गौर करें. माफी और सफाई के लिए ये जरूरी है. प्रभु ने कहा, जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें डांटता हूँ और ताड़ना देता हूँ, इसलिए पछताओ. और कहा है, आज्ञा पालन सीखने तक उन्हें अनुशासित करना पड़ेगा, चाहे वो उन बातों के द्वारा हो जो वो भुगतेंगे. अनुवर्ती दोनों के इल्हाम में प्रभु ने गिरजे के चार उच्च अधिकारियों को पछताने की आज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने घर में लापरवाही जताई अपने बच्चों को पर्याप्त रूप से आज्ञा अनुसार सच्चाई सिखाने में. मोर्मन की किताब में जारेड के भाई पछताया जब प्रभु ने उससे मेघ में के बीच 3 घंटे बात की और उसे धुटकारा क्योंकि वह प्रभु का नाम पुकारने भूल गया था. प्रभु की वो सख्त डांट उसने खुशी से स्वीकार की, इसलिए बाद में प्रभु को देखने का और उससे आदेश पाने का उसे अधिकार प्राप्त हुआ. प्रभु की ताड़ना द्वारा पछतावा होता है, उससे हमारी नेकी बढ़ती है. ताड़ना पश्चाताप को उत्तेजित करता है और उसे स्वीकार करने का अनुभव हमें सिद्ध बनाता है. हमें अधिक आत्मिक उपहारों के काबिल बनाता है। प्रभु कहता है सभी बातों में मेरे लोगों का परीक्षण होना चाहिए ताकि वो महिमा के काबिल बने जो उनके लिए तैयार है। जो मेरी ताड़ना स्वीकार नहीं करेगा वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। ये भी कहा है जो ताड़ना सहन नहीं करेगा पर मुझे नकारेगा वो पवित्र नहीं बन सकते। आलमा के साथियों ने हिलम में जायन का समूह स्थापित किया था पर उन्हें बंदी किया गया। उन्होंने नेक कार्य किए थे, उस यातने के लायक उन्होंने कुछ नहीं किया था, फिर भी प्रभु ने उसको लोगों को ताड़ना के योग्य समझा, उनसे सब्र और भक्ति की परीक्षा ली। पर जो प्रभु में विश्वास रखेंगे उन्हें आखिरी दिन उठाया जाएगा, और उन लोगों के साथ वैसे ही हुआ। प्रभु ने उन्हें शक्ति देकर उनकी यातना इतनी आसान की कि उनके पीठ पर का बोझ उन्हें हल्का लगने लगा, और वक्त गुजरते उन्होंने उन्हें राहत भी दिलाई। वह उस अनुभव द्वारा उनकी भक्ति मजबूत बनी और उनका प्रभु के साथ एक अनोखा बंधन बना। ईश्वर एक और ताड़ना या सुधारक तरीका इस्तेमाल करता है हमें ऐसे भविष्य के और निर्देशन करने जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एल्डर ह्यूब बी ब्राउन ने एक व्यक्तिगत अनुभव बताया जो 12 धर्मदूतों के समूह में थे और पहले प्रधानों में उस वक्त सलाहकार थे। कई साल पहले उन्होंने कनाडा में एक टूटा फूटा खेत खरीदा था। जैसे वो उसे साफ कर रहे थे, उसकी मरम्मत कर रहे थे, उसे एक 6 फुट से ज्यादा ऊंचा बेर का पेड़ मिला। वो बेर पैदा नहीं कर रहा था, इसलिए उसने उसे लगभग जड़ तक घटाया। जड़ के पास उसे हर एक डंडे पर आंसू जैसी बूंद नजर आई, जैसे रोते हुए वो पेड़ कर रहा था, तुमने मेरा नाश क्यों किया? मैं कितना बढ़िया उग रहा था, अब तुमने मुझे घटा दिया है। अब उपवन का हर वृक्ष मुझे नीचा दिखाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा तू माली है यहाँ पे। एल्डर ब्राउन ने जवाब दिया, देख छोटी छाड़ी, मैं यहाँ माली हूँ, मैं जानता हूँ मुझे तुझे क्या बनाना है। मुझे तेरे तुम्हें फल का या छांव का पेड़ नहीं बनाना है, मुझे तेरे बेर की झाड़ी बनाना है। और जब तू भेद फूलेगा तो कहेगा, शुक्रिया माली जी, तूने मुझ पर इतना प्यार किया कि तूने मुझे घटाया। कई साल बाद एल्डर ब्राउन इंग्लैंड में कनाडा की सेना में अफसर था। जब एक बड़ा अफसर शहीद हुआ, एल्डर ब्राउन की बावी थी सेनापति बनने पर उसे लंदन बुलवाया गया। एल्डर ब्राउन पूरी तरह उस तरक्की के योग्य था पर मॉर्मन होने की वजह से उसे ठुकराया गया। जैसे ही महासेनापति ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुझे तरक्की मिलनी चाहिए पर मैं वो तुझे नहीं दे सकता, इसलिए इसके लिए तैयारी और आशा हर और प्रार्थना एल्डर ब्राउन ने 10 साल से की थी, वो तरक्की उन्हें हाथों से निकल गई। वो उसे वापस बुलाया था, वो रेलगाड़ी में चढ़ा और वापस निकला, टूटे दिल से दिल में कड़वापन लिया। जब मैं तंबू पहुंचा, मैंने बिस्तर पर टोपी फेंकी, मुट्ठी बनाकर स्वर्ग को हिलाते कहा, ईश्वर तो ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने सब कुछ किया है इस काबिल बनने, ऐसी कोई बात नहीं की जो मुझे करनी थी, मैंने नहीं की है, तब ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? फिर मैंने आवाज़ सुनी, मैंने वो पहचानी, वो मेरी ही आवाज़ थी और वह कह रही थी, मैं यहाँ माली हूँ, मैं जानता हूँ मुझे तुझे क्या बनाना है। ये वो कड़वापन मेरे रूह से निकल गया और मैंने क्षमा मांगी। अब लगभग 50 साल बाद मैं ईश्वर से कहता हूँ, शुक्रिया माली जी, तूने मुझे घटाया, मुझे इतना प्यार लिया कि मुझे ठोस पहुँचाई। ईश्वर को पता था कि ह्यूब ब्राउन को क्या बनाना है। ईश्वर ने उसका मार्ग बदला उसे पवित्र धर्मदूत के लिए तैयार करने। अगर हम हार्दिक इच्छा और प्रयास करें स्वर्गीय पिता की ऊंची अरमानों के काबिल बनने, तो वो हमें सहायता देंगे, चाहे वो आराम हो, ताकत, अगर उसे स्वीकार करने की तैयारी हो। सुधार कई अलग अलग तरीके से आ सकता है और स्तोत्र से आ सकता है। प्रार्थना करते हुए ईश्वर हमारे दिल में पवित्र आत्मा द्वारा संपर्क कर सकता है। कुछ प्रार्थनाओं का जवाब होता है ना या अभी नहीं, अनपेक्षित रूप से भी आते हैं। हमें शास्त्र पढ़ते हुए ताड़ना मिल सकती है, हमें याद दिलाया जाता है कमियों, आज्ञा भंग या लापरवाही के बारे में। सुधार दूसरों के द्वारा भी आ सकते हैं, खासतौर पर उनसे जिन्हें इन्होंने ईश्वर ने तुम्हें प्रेरणा देने नियुक्त किया है, जैसे धर्मदूत, पैगंबर और बिशप। ये आज भी प्राचीन कालों जैसे कृषि में संतों के सिद्ध बनाने हैं। शायद इस सम्मेलन में बताई कुछ बातें तुम्हें पछताने के लिए पुकार रही हो। ताड़ना मानने से तुम्हारी वृद्धि होगी। हमें गिरजे के सदस्य होने की हैसियत से एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। ये गिरजा स्थापित करने का मसीहा का एक खास वजह है। सुधार नम्रता से हमारे जीवन में भी आ सकता है। एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट, जिसने अभी प्रवचन दिया, ने बताया है कि शादी के शुरुआत में उनकी पत्नी जनीन ने उन्हें बात करते हुए लोगों की ओर देखने की सलाह दी। कहा, तुम हर तरफ देखते हो, जमीन पर या दीवार पर आंखों में नहीं। उन्होंने वो नम्र सुधार दिल से लिया और उसकी वजह से वो लोगों को सलाह देने में अधिक प्रभावशाली बने। मैं प्रधान स्कॉट के निर्देशन में प्रचारक था और मैं बयान दे सकता हूँ कि वो लोगों से बात करते हुए सीधा आंखों में देखते हैं। ये भी बता सकता हूँ कि जब किसी को सुधार की जरूरत हो, वो निगाह उन्हें चीर देती है। माता पिता को बच्चों को सुधारना चाहिए, जरूरत पड़े तो डांटना भी चाहिए, ताकि बच्चे बिना निर्देशन शैतान के कब्जे में न आए। प्रधान बॉयड के बैकर ने कहा है कि जो सुधारने की जवाबदेही टालता है या उसे त्याग करता है, वो खुदगर्ज है। पर याद रखो कि डांट वक्त पर होनी चाहिए, तीव्रता और स्पष्टता से, तभी जब पवित्र आत्मा उकसाती है, और बाद में उसकी ओर प्यार बढ़ाना चाहिए ताकि वो तुम्हें दुश्मन न माने। प्रभु ने जोसेफ स्मिथ और दूसरों को डांटा था। घर में प्रायः प्रूफ से सुषमाचार की शिक्षा न देने के लिए, पर उसने बाद में उन्हें कहा, मैं तुम्हें दोस्त पकड़ता हूँ क्योंकि मैं तुमसे दोस्त हूँ। याद रखो, अगर हम सुधार ठुकराएंगे, लोग वो देना बंद करेंगे तुम्हारी ओर प्यार होते हुए भी। अगर तुम बार बार प्यारे अश्वा की ताड़ना नहीं मानोगे, वो भी रुकेगा। उसने कहा है, मेरी आत्मा सदा इंसान के साथ नहीं रहेगी। एल्डर जोसेफ डी वटलैंड ने खुद के को शुद्ध और नम्र बनाने के लिए ये तरीका अपनाया। वो अपने हर सौंपे कार्य के बाद विश्लेषण करते थे। ईश्वर को खुश करने के लिए उन्होंने संकल्प किया था कि हर सौंपे कार्य को अगली बार अच्छी तरह कैसे किया जाए। हम सब ईश्वर की ऊंची उम्मीदें सुतुष्ट कर सकते हैं, हमारी क्षमता या कौशल्य जितनी भी हो। मोनी कहता है, अगर तुम सब ईश्वर के से पूरे तन मन और शक्ति के से प्यार करोगे, तो फिर उसकी अनुग्रह काफी है और उसके द्वारा तुम मसीह जैसे सिद्ध बन सकते हो। हमें भक्तिशील कोशिश करनी चाहिए उस अनुग्रह को ग्रहण करने की। मैं कोशिश में ईश्वर की तारणी स्वीकार करना, उसे मानना और पछताना शामिल है। हम उस प्यार के लिए, सुधार के लिए दुआ मांगते हैं। मेरी दुआ है ईश्वर तुम्हें उसकी ऊंची अपेक्षा पूरी करने कोशिश में सहायता देगा और वो पूरी खुशी जो स्वाभाविक रूप से आएगी। मैं जानता हूँ कि हम परमेश्वर और मसीह के साथ जैसे हो सकते हैं। मैं स्वर्गीय पिता, उसके प्रिय बेटे और उनके द्वारा मुमकिन क्षमता का बयान देता हूँ जो उनके द्वारा हमें मुमकिन है। ये बयान मैं बेहिचक देता हूँ ईसा मसीह के नाम से, आमीन।